نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Barriers to productivity or fruitfulness نفع مندی اور نتیجہ خیزی کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے Discover Yourself یعنی اپنی تلاش سیریز کا اس سیشن کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم نے خود کو ڈھونڈ لیا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک منہ بولتا اظہار ہے ایک بچہ پیدا جو ہوتا ہے اس کا دنیا میں آنا اور اس کے بعد چند سالوں میں بڑھتے ہی جانا یہ بذات خود ایک بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بڑھوتری اور گروتھ رکھی ہے لیکن بعض لوگوں کو دیکھ کر یا پھر ان کو خود بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم گرو نہیں کر رہے ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہم جو سوچتے ہیں وہ سب کچھ نہیں ملتا اور اسی طرح کی چند باتیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ فطرت کا کیا اصول ہے اور آپ اور میں ہر جگہ دیکھیں یہ سیشن ہر ایک کے لیے یہ ایک ماں کے لیے بھی ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پوری صحیح تربیت نہیں کر پا رہی یہ اس نیولی میرڈ لڑکی کے لیے بھی ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ شوہر کو سمجھ نہیں پا رہی اور اسی طرح وہ شوہر جو سوچتے ہیں کہ جو سوچا تھا وہ تو نہیں ہوا شادی تو بس ہو گئی اور اسی طرح سے پھر جاب کرنے والوں کی جاب کے لیے اور کاروبار کرنے والوں کے کاروبار کے لیے اور اسی طرح سے دین کی خدمت کے نام پر باضابطہ یا ان کہہ لیجئے کہ پلان قسم کی کوششیں کرنے والوں سب کے لیے ہے اور اس کے لیے ہمارے لیے بہترین رہنمائی اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی اور اس کے بعد پھر بہت سارے انسانوں کے تجربات اور مشاہدے حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت اپنی جگہ ہی ایک ایسا معروف لفظ ہے کہ جس میں سے ہر خیر اور ہر موتی چنا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ جب لفظ قرآن کی بات کرتے ہیں تو سوچیں اچھا یہ تو کوئی مذہبی سیشن ہوگا تو ان کو یہ نہیں پتا کہ مذہب کون سی راہ ہے جس پہ انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارا پوٹینشیل اس کلام میں بھی رکھا ہے اور جب اس کو ہم کھولتے ہیں تو پروڈکٹیویٹی کا اور فروٹفلنیس کا سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ درخت سے ملتا ہے پچھلے استادوں میں سے ایک استاد جن کو میں اپنا بہت بڑا استاد مانتی ہوں فطری میلان کی وجہ سے کہہ لیجئے یا نظر کا قصور کہہ لیجئے ہمیشہ مجھے درخت بڑے خوبصورت لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں باغ میں جاؤ پھول ہوں گے اور جتنی شاعری پھولوں پہ ہے اتنی درختوں پہ نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیا وجہ جب بھی باہر جاتے ہیں میری نظر درختوں پہ ہوتی ہے اور اسی طرح اپنے ہی گھر میں سے کسی ایک کو جانتی ہوں کہ ان کی نظر بادلوں پہ ہوتی ہے تو ہر ایک کی ایک سوچ ہوتی ہے میں بہت سوچتی ہوں کہ صرف درخت میں کیا خوبی ہے ہر شہر ہر ملک ہر علاقے اور ہر موسم کے درخت کو میں بڑے غور سے دیکھتی ہوں تو آج میرے یہ بڑے استاد ہیں اور میں بڑے شعور سے کہتی ہوں یہ وہ خاموش استاد ہوتے ہیں کہ جن سے اگر انسان فیض لینا چاہے نا تو پھر تو کہیں جانے اور آنا جانے کی بات تو دور کی ہے ہر لمحے یہ چیزیں آپ کے دل دماغ کو مسخر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درخت کی مثال دی ہے ویسے بھی بہت جگہ دو مثالیں ہیں ایک تو مومن کی مثال ہے اور ایک منافق کی بھی ہے اس کا تذکرہ شاید کہیں اینڈ پہ کر دوں اگر آپ چاہیں گے تاکہ مجھے آپ کو اپنی اصل تو پتہ لگ جائے لیکن اس وقت جو مثال آپ کے میرے سامنے ہے وہ ہے سورۃ ابراہیم کی چند آیات ہم ان آیات کے ساتھ اپنے آج کے اس سیشن کو شروع کریں گے قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں شروع تو ہم کر چکے لیکن جب تک بات بسم اللہ سے نہ شروع ہو اور اللہ کا نام ہے اقرأ باسمک اللہ کے نام کے ساتھ جو سب سے بڑا ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں اس میں ایک درخت ہے اگر آپ کے پاس بھی مصحف ہے تو آپ کھول لیجئے تو زیادہ بات اچھی سمجھ آتی ہے یاد رکھیے یہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے ان آیتوں پہ تو دو دو گھنٹے کی تفسیر بھی کی گئی ہے الحمدللہ بہت کچھ ہے ہر سال دورہ قرآن میں انہی آیتوں کا ہم ایک پاور پوائنٹ دکھاتے ہیں جو اس سال بھی دکھایا گیا کہ کیسے روٹ ٹو فروٹ تک کے مراحل ہیں اس وقت یہ آیت صرف ایک ٹول ہے میرے سامنے میں اس کی باریکیوں میں نہیں جاؤں گی کیونکہ پھر باقی بات نہیں ہوگی آپ کہیں گے جائیے کیوں میں کہوں گی ہاں جانا چاہیے लेकिन फिर ये कहूँगी कि इसके बाद तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इस वक्त ये तफसीर नहीं बल्कि तमसील है। आइए देखते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अलम तर कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा बात किस तरह बयान फरमाई? मिसल एक पाकीज़ा दरख्त के। कैसा है वो दरख्त? असलुहा साबितुम व फरुहा फिस्समा। जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी टहनियाँ आसमान में हैं। चलिए, दो सिफात तो आपको दरख्त की मिल गई, यानी जड़ें मजबूत और फैलाओ आसमानों तक, जिसको कहते हैं कि बियॉन्ड द ब्लू स्काई। तीसरी खूबी, तूती उकुलहा कुल्ला हीन निम्बिज़नी रब्बिहा। जब अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त अपना फल लाता है, यानी सदाबहार है, गर्मी सर्दी बरसात बहार खिजां का इस पे कोई फ़र्क नहीं है, वो किसी भी घड़ी में खुशी का वक्त है या गम का वक्त है, हर वक्त फल लाता है। और दरख्त का फल ही तो मतलूब होता है, गो के उसे साया भी मिलता है, आंखों को ठंडक भी मिलती है। लेकिन इसकी ये खूबी है, ये मौसमी नहीं है, ये रस्मी नहीं है, ये सिर्फ एक शो पीस नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ होता कैसे है? तूती उकुलहा कुल्लाहीनम बेजनी रब्बीहा, रब के इज़न से, ये अल्लाह ताला के हुक्म से आते हैं फल। दरख्त की क्या मिजाल कि अपने बाद के लिए ऐसे बीज छोड़ जाए कि दोबारा एक दरख्त नहीं, दरख्तों की पूरी लाइन और कतारें लग जाए। ये जो होता है ये अल्लाह के हुक्म से होता है। व यद्रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास। और बयान करता है अल्लाह ताला मिसालें लोगों के लिए। क्यों? लअल्लहुम, ताकि वो यतज़क्करून, वो नसीहत पकड़े। ये है एक बेहतरीन दरख्त जिसके अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की, और आपको मुझे इसमें तदब्बुर की और तज़क्कुर की दावत दी। कुरान पाक की ऐसी आयात को तमसीली आयात कहते हैं, और एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 250 आयात कुरान पाक में तमसीली हैं। मिसाली कह लीजिए, बेमिसल कह लीजिए, एग्जेम्पलरी कह लीजिए, एनालिजीज कह लीजिए, हर इंसान अपने शऊर के मुताबिक इनसे फ़ायदा उठाता है। एक अच्छा दरख्त बहुत जमा हुआ, गहरी रूट्स हैं उसकी, और उसका साया बहुत दूर तक है, और टहनियों के ऊपर फल भी हैं। अगर आप देखें तो एक दरख्त क्या है, कह लीजिए कि ऑल इन वन। दरख्त एक है, आगाज़ हुआ एक छोटे से बीज से, और वो बीज कुछ दिन के लिए मट्टी में दबाना पड़ा। दबने के दिन, रुलने के दिन, ह्यूमिलिएट होने के दिन। और अरबी एक कहावत है जिसका खुलासा क्या है कि दबे बगैर इज्जत नहीं मिलती, रुले बगैर बंदे की कदरदानियाँ नहीं होती। आप उस बीज को मट्टी में से डालने की बजाय शीशे में रख दीजिए, क्रिस्टल जार में रख दीजिए, आप उसको पानी में डाल दीजिए कि दिखता तो रहे ना, नज़र तो आता रहे ना, तो याद रखिए कि प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? रूट टू फ्रूट, जड़ से फल बनने का सफ़र, इसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आप और मैं एक दरख्त हैं अगर, तो हमारा फल, हमारे बाद की वो नस्लें, जो ऑफ कोर्स सबसे पहले अमूमन तसव्वुर में यही आता है कि हमारे बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे, यानी अच्छी नस्लें कह लीजिए, हमारा फल हमारी नस्लें हैं। इसी तरह से आप अपने आप को किसी भी रूप में देख लीजिए, आप भी तो एक दरख्त है ना। इस वक्त अल्लाह ताला ने यहाँ दरख्त को इंसान कहा है, और इंसान दो ही तरह के हैं। एक वो हैं जो दरख्त की तरह मिमनी यमना, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है, कभी तुमने अपनी तख्लीक पे गौर किया? पानी का एक कतरा खुली आंख से देखा ना जाए। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी पानी के एक कतरे से पैदा किया जाता है, और मट्टी तो गूंद दी थी बाबा आदम के दौर से ही, खमीर तो मट्टी का ही है। जब एक इंसान दुनिया में आता है तो कुछ अरसा माँ के पेट में छुपा दिया जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला की फितरत का ये एक सबक सीख लीजिए यहाँ भी, कि आप सामने आना चाहते हैं, कुछ अरसा आपको पीछे रहना पड़ेगा। आप नुमाया होना चाहते हैं, कुछ अरसा आपको खुद को दबवाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप कहते हैं कि बुनियाद का पत्थर, आज हर बंदा अपनी ज़िंदगी को देखे तो ख़ुद से एक सवाल करे, क्या मैं एक कामयाब इंसान हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रूप में, यानी मेरी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ रंग हैं, मैं उसमें कामयाब हूँ? क्या मैं एक कामयाब माँ हूँ, कामयाब बेटी हूँ, कामयाब बीवी हूँ, कामयाब बहू हूँ? क्या मैं अपने इर्द गिर्द के लिए एक कामयाबी का सिंबल हूँ? मेरे हमसाए मेरे बारे में क्या कहते हैं? ये माशरा मुझे क्या कहता है? मेरा दीन मुझे क्या कहता है? वम ममा यन फो ना सुफ यम कुस का जो सबक पढ़ा था, क्या मैं वाकई लोगों के लिए नफ़ामंद हूँ? आप कहते मैंने क्या करना था, मेरे में तो कोई खूबी कोई नहीं, मुझे तो हालात ही नहीं अच्छे मिले। खूबियाँ बड़ी थी, हालात नहीं अच्छे, यानी मुराद ये होता है कि ससुराल नहीं अच्छा मिला, सीधी सी बात है। और मेरी तो सारी इन्होंने पर्सनैलिटी क्रश कर दी, ताने दे दे के। तो बीच भी अगर ये रोने रोए कि ये क्या किसान का बच्चा मेरे ऊपर जुल्म करता है, आते ही मुझे दबा देता है, पहले तो खरीदा और उसके बाद मट्टी में डाल दिया। कई औरतें नहीं कहती, ससुराल में आए मट्टी में ही मट्टी हो गए, जिसने कहा जो कहा सुनना पड़ा, ताने बातें नंदों की बातें। इसलिए मिसाल देती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। लेकिन आम तौर पर खवातीन ये कहती हैं, हम बड़ी टैलेंटेड थी, हम बड़ी कामयाब थी, फिर क्या हुआ, फिर हमारी मत मार दी इन्होंने। यदि ये बीवी से कोई गलत भी काम हो जाए, घर में गड़बड़ भी हो जाए, कहती हैं आपने ही मेरी मत मारी हुई, पहले तो मैं अच्छी थी, ये बच्चों ने मत मार दी, कुछ ससुराल ने मार दी, कुछ मियाँ साहब मार रहे। यानी गोया के हमारा गुमान जो है कि हम ज़मीन की जड़ों से सर उठा के निकलना चाहते हैं, फौरन ऊपर जाकर कोई कहता है चुप चुप दबी रहो दबी रहो, खबरदार सर उठाया चुप चुप। तो याद रखिए ये हमारी गलतफहमी है। जब अंदर कुछ होता है ना तो बंदे को इजहार तो मिलता है। इंसान को मट्टी में छुपा देता है कोई बीज की तरह, अगर उस बीज में जरा सा भी दम खम होगा ना, वो जरूर निकलेगा। आप खुद आजमा के देख लीजिए, धनिया के बीज ले लीजिए और किसी भी जगह जाकर नरम सी मट्टी में डाल दीजिए, आप उसको दबा के निकलेंगे, 4-6 दिनों के बाद देखेंगे तो वहां हल्की हल्की सी पतली सी एक डंठी एक कंपल की सूरत में निकली होगी। अब आप कहते हैं अच्छा ये कहाँ से आ गई, थोड़े देर उसको रहने दीजिए, आप देखेंगे कि वो पतली सी डंडी कैसे एक पौधे में बदलती है, और फिर कुछ दिनों महीनों में हर पौधे की हर एक की असल फ़र्क है, कैसे वो सर उठाकर एक मासूम से दरख्त में ढलती है, और दरख्त जितना पुराना उतना मजबूत। हर साल दरख्त के तने के इर्द गिर्द पूरा सर्कल लगता है, यानी जब दरख्तों को काटा जाता है तो उनके वो जो TR होते हैं ना, उसमें दायरे गिन लीजिए तो आपको उसमें से नज़र आने लगेगा कि क्या अंदर सालों के और महीनों के दौर फेर हैं। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा, आपकी मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है। आप और मैं आज कितने साल के हैं, पिछले साल से लेके आज तक मेरी आपकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द एक दायरा लग जाना चाहिए। इसको तजुर्बे का दायरा कह लीजिए, इसको कामयाबी का दायरा कह लीजिए, इसको जहानत का दायरा कह लीजिए। अगर आपके अंदर कुछ दमखम है ना तो आप ज़रूर उभरेंगे, पक्की बात है, पक्की बात है, ये ज़रूर होगा। देखिए उसी बीज को ज़मीन में डालने से पहले हल चलाना पड़ा, लेकिन उस नन्हे से पौधे को बाहर आने के लिए कोई हल चलाना नहीं पड़ा। ये जुर्रत है, ये ताकत है, ये आपका पोटेंशियल है, ये आपका टैलेंट है, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ छुपा हुआ तोहफा है जिस पे हमने पिछले सेशन में बात की थी। तो जिसमें खूबी होगी ना, अल्लाह उसको ज़रूर बाहर लाएगा, लिख ले, फितरत का असूल है। हमारे यहाँ एक जुमला बड़ा मारूफ है, कहते हैं कि जहाँ दाना पानी होता है बंदा वहाँ पहुँच जाता है, सच है ना? लिखिएगा एक जुमला, जम बना दें। जैसे रिस्क का दाना पानी होता है ना, इसी तरह इंसान की खैर का, उसके इल्म का, उसके टैलेंट का भी एक दाना पानी होता है। आपके अंदर अगर कुछ खूबी होती है और लोगों को नहीं पता, रब को पता है, जिसने डाला वो कहते हैं मैंने खुद डाला था, फरिश्तों देखो मैंने इस बंदे में ये टैलेंट डाला था, मैंने इसको ये खूबी दी थी, तुम कैसे कैसे हो, नहीं है। अब जब देखा जाता है कि खूबी तो है तो बीज कोई नहीं बन रहा, बाहर आ नहीं रहा, अल्लाह ताला को पता होता है बीज अच्छा है, इर्द गिर्द की ज़मीन नहीं अच्छी। लिखिए एक जुमला, अगर आप खैर का बीज हैं ना तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपका दाना पानी उठाता है और आपको वहाँ ले जाता है जहाँ की ज़मीन زرخیز ہوتی ہے، کیونکہ ایک چیز دانہ ہے تو دوسری چیز زمین ہے. اچھا دانہ خراب زمین میں بھی نہیں اگتا، اور اسی طرح سے اچھی سے اچھی زمین میں بیکار دانہ ڈال دیجئے تو وہ بھی نہیں اگے گا. جب آپ کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، اللہ آپ کی خوبی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جاتا ہے وہاں سے. خیر، آپ کہتے ہیں چلو یہاں ٹرائی کرتے ہیں، ادھر ڈالتے ہیں. آپ کے اس بیج کو کوئی پکڑ کر کسی اور کھیت کی زمین میں ڈال دیتے ہیں. اب کیا ہوا، کچھ ہی دن گزرے تو وہاں سے کومپل نکلی، ماشاء اللہ. اب کومپل کیا نکلی، ایک سے ایک کرتے کرتے آپ تو گرو کرنے لگ گئے. لیکن ہوا کیا، اوپر سے پانی نہیں کوئی ڈالتا. تو پانی نہیں ہے تو بھی سوکھ جائیں گے آپ. پہلے بخیر تھی لیکن باہر نہیں آ رہی تھی، ذرا سی حرکت کروائی رب نے آپ سے اور آپ کا دانہ پانی کہیں اور گیا، پھر مٹی بھی اچھی مل گئی. اب آپ اگ بھی گئے، جڑیں بھی لگ گئیں، پودا بھی بن گیا، لیکن پانی نہیں اوپر سے آیا، کوئی سورج کی روشنی نہیں ڈالتا. تیسری چیز جو ہمارے مزاج میں ہے، یہ سمجھتے ہم کہ ایک پودے کو اگنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. اب کیا ہوتا ہے، اب ضائع ہو جائیں گے. جتنی مرضی فصل لگی ہو، کیڑا پڑ جائے گا تو ضائع ہوگی، ٹڈی دل پڑے گا تو ضائع ہوگی، آگ کا بگولا پڑے گا تو ضائع، تو پھر بھی کامیابی تو کوئی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ آپ یاری کرنے والے کوئی نہیں، میرے پودے کی جڑوں میں پانی کوئی نہیں ڈالتا. اور پھر اللہ کو تو پتہ تھا آپ میں خیر ہے، تو پھر اللہ پتہ کیا کرتا ہے، آپ وہی رہیں، آپ کے اندر وہ رہے خیر. پہلے تو اللہ نے آپ کا دانہ پانی پہنچایا کسی ایسی مٹی والے کے پاس کہ جہاں مٹی بڑی زرخیز تھی، اللہ وہاں سے بھی آپ کو نکالتا اور آپ کو کسی ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں نہ صرف یہ کہ آپ کے ارد گرد کی مٹی بڑی زرخیز ہوتی ہے، پھر آپ اس پہ سر اٹھاتے ہیں، پھر کچی کچی جڑیں ہوتی ہیں، پھر چھوٹا چھوٹا تنا بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس تنے کو ایک پودا بننے میں مددگار بھی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کو وہاں بہت سارے آپ یاری کرنے والے دے دیتا ہے، آپ کے پودے کو حفاظت سے رکھنے والا بنا دیتا ہے. لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ کلیمتن طیبتن کشجرتن طیبہ. عقل مانتی نہیں ہے کہ اتنا سا درخت اتنے بڑے درخت میں اور ایک مٹھی دانے اتنی بڑی فصل میں کیسے بدل گئے. اور فطرت کا اصول دیکھیے، ہر سال کی فصل، کہیں 4 ماہ کی بعد کی فصل، کہیں 6 ماہ بعد کی فصل. اب مجھے زیادہ پتہ تو نہیں ہے، سنا ہوا ہے نا کہ یہ گندم کا سیزن ہے، اچھا اب یہ چاولوں کا سیزن ہے اور یہ پالک کا سیزن ہے. کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ 4-6 ماہ میں اگ جاتی ہیں، بلکہ کاٹو تو اوپر سے دوبارہ پھر اگ جاتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو بس ایک ہی دفعہ لینا ہوتا ہے، مولی آئی تو کاٹ لیجیے، مولی کو اتر ہی چھوڑ دیجیے، بالآخر منگرے بن جائیں گے اور اپنا کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہتے ہیں یہ پودے. تو واپس آئیے، چند سوال کیجئے خود سے، میں بھی اور آپ بھی، کیا میں خیر کا بیج ہوں؟ آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جب لفظ خیر کا بیج آتا ہے تو عام طور پہ تو بیجوں میں پھر بڑے قیمتی اور اچھے اچھے بیج ذہن میں آنے لگتے ہیں نا. اب ہم سب اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو جتنے رشتے میں نے بول دیے یہ تو کامن گراؤنڈ پہ ہیں. تھوڑا سا اوپر اٹھیے، آپ قرآن پڑھ چکی، اللہ نے آپ کی زندگی میں یہ ایسی پیاری کتاب کھول دی جو ایک ڈسکوری چینل ہے، اس نے آپ کو بھی کھول کے رکھ دیا. آپ کہتے ہیں میں کچھ کروں گی، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. قرآن پڑھنے کے بعد اور اس علم سے باضابطہ جڑنے کے بعد جو ایک چینج لازم آتی ہے، اور وہ کہہ کے بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے، میں کچھ کروں، کچھ ثواب ہو، کوئی صدقہ جاریہ ہو. کبھی المال والبنون زینت الحیات دنیا آیت یاد آتی ہے کہ مال اور بیٹے زینت تو ہے لیکن کو سب باقیات و صالحات کیسے بنائیں. کبھی ماں قدم و آثارہم آتی ہے، اور کبھی تو یہی آیت سامنے رہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن کی مثال تو ایک درخت کی طرح، اور وہ بھی کھجور کا، سیدھا، پھل بھی دیتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت اور اس سے فائدے بھی بہت ہیں. تو دل میں ایک تڑپ آتی ہے، میں کچھ کروں، میں کیا کروں. اب اس سوال کا جواب پانے کے لیے بندہ کچھ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، کر رہے کر رہے کر رہے، اینڈ کیا ہے؟ آپ کی میری ہر کوشش کا اینڈ کیا ہے؟ وہاں اگر روٹ ٹو فروٹ ہے تو فاؤنڈیشن ٹو ٹاپ موسٹ فلور، یہ ایک بلڈنگ کی سکسیس ہوگی. خود سے سوال کیجئے، کیا میں خیر کا بیج ہوں؟ اور میں اکثر ایک دعا دیتی ہوں اپنے پیاروں کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دے. آپ کہتے جی الحمدللہ خیر کا بیج ہوں، تو پھر اگلا سوال پوچھئے، क्या मैं जरखेज जमीन में डाली गई हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मुआविन है मेरे घर वाले, मेरे शौहर, बच्चे और माशाल्लाह दीन के साथी भी बड़े मुआविन है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और गुट लगा लीजिए, एक और मुबारक चेक। फिर अगला सवाल खुद से पूछिए। क्या मेरे बीज से जड़ और जड़ से कोंपल फूट रही है? कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है जी, माशाल्लाह इतने अच्छे तो मुआविनीन है और घर में तो पसंद ही बड़ा करते हैं लोग मेरी इन सारी चीज़ों को। इस पे भी क्लिक कीजिए। चौथा सवाल खुद से पूछिए। क्या बाप एक बीज से दरख्त बन चुकी हैं? अब यहाँ थोड़ी सी जवाब में गड़बड़ गड़बड़। हाँ कैसे भला, पता नहीं क्यों भाई। और ज़रा सा सवाल कर लें। क्या आपके इस दरख्त पे अब शाखें फैलने लग गई इधर उधर? और क्या इन शाखों के सिरों पे सब्ज़ सब्ज़ पत्ते और फिर आखिर में सुर्ख और खूबसूरत रंगों के फल लग रहे हैं? ये है सवाल हमारे आज के इस पूरे सेशन का, और इसी की रुकावटें आगे देखने लगे हैं। अगर आपके अंदर खैर है ना, तो फिर उसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि आप इस दुनिया से जाने से पहले बहुत सारे खैर के बीज छोड़ के जाएं। देखिए, अगर सिर्फ फ्रूट तक ही दरख्त का सफ़र ख़त्म हो जाता ना, तो हर बीज एक दफ़ा फल बनता और ख़त्म। ये हैं वो कोशिशें जो मेरी आपकी ज़िंदगी में खैर की आप और मैं करते हैं। लेकिन मैं आपसे दो हस्तियों का नाम लेके सवाल कर लेती हूँ, आपको जवाब मिल जाएगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, सब जानते हैं उनको मोस्टली, और इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इल्मी दुनिया की खैर की अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त मेरे ये सारे सेशंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नूरुल-कुरान के स्टाफ के लिए फ़र्ज़ के दर्जे पे हैं ये सब सवाल जवाब। उसके भी मरहले हैं, जिनको पता है उनको पता है माशाल्लाह। कैसे इसका पहला शख्स वो होता है जो कुरान सीखने के लिए बाज़ाब्ता रजिस्टर हो जाता है? दारे कुरान और बाकी चीज़ें तो सब जिधर जैसे मर्जी, उसकी भी रजिस्ट्रेशन होती। कई हज़ार बंदा हर साल दारे कुरान में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है माशाल्लाह। फिर ऐसा ऐसा सबीलुल जन्ना की रजिस्ट्रेशन, फिर नूरुला नूर, फिर इल्मुन नाफियन, और फिर सारी ज़िंदगी नफ़ामंद बनकर जीने का अर्ज़। तो हर एक के लिए है ये सेशन। हम सब पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, और ये काम वो है जो अल्लाह के नबियों ने किया। इस वक्त अगर बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, मसलन अगर कोई मर्द मेरी जगह बैठकर ये बात करता और उसके सामने चंद ब्रदर्स होते और वो कहते हैं जॉब चली गई है, कोई कहता है मास्टर्स कर लिया था तो जॉब नहीं मिली, कोई कहता है कारोबार शुरू करता हूँ तो चलता नहीं, यानी अगर मर्दों के बीच में ये टॉपिक चलता ना, तो उसका बेस्ट तरीका था कि नौकर से मालिक कैसे बनूँ। वो मर्दों के मामले में ज़्यादा उस पर इंटरफेयर नहीं करती, माशाल्लाह बहुत सारे मर्द हैं जो मर्दों की मदद करते हैं इसमें। लेकिन याद रखिएगा कि हर एक के ग्रो करने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। एक महीने नौकरी चली जाए तो सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता है इन मुल्कों में, जहाँ हम कहते हैं कि हम बहुत आला दर्जे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि खर्चे इतने हैं जो आता जाते साथ साथ दिए जाते हैं। एक महीना शायद चला जाए, दूसरे महीने में परेशानी लग जाती है। हमारा यहाँ वो हाल थोड़ी होगा कि जो हमारे बाप दादा होगा, तो नहीं तो ना सही, वो भी उतना ही खाते थे, जो कुछ नहीं करते थे, जो खाते हैं उतना भी। तो बंदे को फिक्र लग जाती है। जिस तरह एक मर्द को अपने माल और जॉब के छिनने का गम लगता है ना, इसी तरह हम सब जब दीन की तरफ आते हैं तो हमारा खुद को परखने का एक अंदाज है। कैसे? मसा आपसे मैंने एक सवाल किया, क्या मैं खैर का बीज हूँ? आपके जहन में फ़ौरन आता है मेरे में खैर तब है जब मैं टीचर बन जाऊँ। बड़ी से बड़ी गलत फहमी निकाल कर फेंक दीजिए अपने दिमाग से। अभी अभी मैंने वो सारे स्टेप्स तो छेड़े नहीं आपसे, जो आगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आज सारे बैरियर्स दे जाऊँ जो हमें बीज से दरख्त और दरख्त से फल और फल के बाद फिर बीज बनने नहीं देते। ये पूरा साइकिल है। बात कर रही थी ना कि अगर सिर्फ बीज दरख्त का सफ़र बीज से फ्रूट पे रुक जाता, लिखिए ज़रा, तो क्या होता? फल खा लिया, कोई बहुत अच्छी किस्म का था तो किसी बड़े अमीर बंदे ने 200 रुपये किलो भी ख़रीद के ले आया वो आम। अगर वो ज़रा मुनासिब किस्म का कोई होता तो वो कोई ज़रा सस्ती किस्म, ख़त्म। खाया, किसी ने मिल्क शेक बना लिया, किसी ने चटनी बना ली, किसी ने मुरब्बा बना के खा लिया, ख़त्म। अब क्या करेंगे? अब अगले हर दफ़ा क्या पहले बीज नए बनवाएं? फितरत का ये असूल नहीं है। आज फितरत के इस असूल को तोड़ने की कोशिशें तो बहुत हो रही हैं। ऐसे बीज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कि हर दफ़ा बीज खरीदना पड़े। इससे बड़ा शैतान का वो वादा नहीं पूरा होगा जो सूरत निसा में अल्लाह ने कहा था ना कि वयुमन्नीहिम, और उसी के अंदर एक आयत आती थी कि वो तब्दील कर देंगे खल्किल्ला, फितरत का सूल है कि एक गरीब किसान उसी में से बीज लेके कमाए, वो कहाँ हर साल जाता फिरे और ढूंढता फिरे बीज कहाँ से मिलता है, कभी अच्छा आ गया कभी बुरा आ गया, बादल बन रहे तो बन रहे, रॉ मटेरियल कायनात में फैला हुआ है। आप पानी निकाल लीजिए कुएं में से फिर पानी फ्रेश आ जाता है, आप तेल निकालिए थोड़ी अरसे के बाद उन्हीं जगहों पे फिर तेल होगा, फितरत का असूल है। आप नमक निकालते जाए अंदर से और नमक आगे से निकलता जाएगा। अल्लाह ने इंसानों को इंसानों का मोहताज नहीं रखा कि पहले हमसे खरीदो फिर तुम लेना। नेचुरल रिसोर्सेज और सदियों से चल रहे हैं, इंसानों को तो अभी चंद साल गुजरे होंगे इंसानों के खुदा बने हुए या इस दावेदार के। फितरत का असूल है, चीज़ अपने पाँव पर रहती है। और हमारे वालिद शुरू से ये बात कहते थे, कभी समझ भी नहीं आती थी, अब आती हैं कुरान पढ़ के, कि दरख्त को हमेशा अपने सहारे पे खड़ा होना होता है। अगर दरख्त को भी सहारा देने के लिए कोई और होगा तो क्या होगा, मैं लड़खड़ाया तो किधर जाओगे, मुझे सहारा मानने वालों अगर मैं लड़खड़ाया तो किधर जाओगे। अब बात समझ आती है, ये बात कितनी सच्ची थी। आप में से वही शख्स, वही सिस्टर, वही साथी बीच से दरख्त और दरख्त से फिर फल बनेंगी जो अपने कदमों पे खड़ी होंगी। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कुछ उससे ले लेंगे हेल्प, कुछ उससे ले लेंगे, सारी गड़बड़ी वही होती है। जब आपने दुनिया से जाने से पहले कुछ दे कर जाना है तो सवाल कीजिए कि हमें आगे जाने से फिर कौन रोकता, क्या वाकई मेरी ज़िंदगी में खैर है। एक इंग्लिश कहानी पढ़ी थी, बल्कि उस पर मैंने बहुत जगह सेशंस भी किए छोटे बड़े। खुलासा क्या है कि कंपनी के जो लोग थे हस्बे आदत अपने काम पे आते हैं बिल्डिंग में, लेकिन मेन डोर पे लिखा हुआ है कि क्लोज्ड और नीचे मैसेज है कि आज एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी वजह से आज ये ऑफिस तो बंद है, लेकिन इसी बिल्डिंग के नीचे जो बेसमेंट है उसमें उसका फ्यूनरल है। और ये याद रखिए कि ये वो शख्स फौत हुआ है जो हमारे इस इदारे या उसको आप कोई कह लीजिए कि हमारे इस काम की बेहतर होने में और इसके ग्रो करने में बहुत बड़ी रुकावट थी, तो आज अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हो गया है। तो बेहतर है कि आप जाकर ज़रा उसकी आखिरी रसूमात में शामिल हो जाएं। खैर, अब जो वर्कर आता है, एम्प्लॉई आता है, बॉस जो भी आता है, वो उस साइन को पढ़ता है आउट ऑफ क्यूरियसिटी कि ज़रा देखे तो सही ये कौन था जो आज तक हमारी तरक्की के रास्ते की रुकावट था। वो नीचे जाते हैं, वहाँ देखा तो वाकई वो रसूमात जो होती हैं घरों में उस तरह की हो रही हैं, और बीच में एक कफिन है और लोगों से कहा जाता है कि वन बाय वन जाइए अंदर और दीदार करके वापस आ जाइए। खैर, जिसकी ये बात थी वो कहता है मैं भी लग गया लाइन में कि देखो क्या, लेकिन वो कहता है कि एक बड़ी अजीब सी कहानी थी कि जो अंदर जाता था ना थोड़ी देर बाद उसकी चीख की आवाज़ आती थी और वो बाहर आ जाता था, फिर दूसरा फिर तीसरा। इसको भी तजस्सुस हुआ कि मैं भी देखूं है कौन, इतना कोई करीबी है कि उसके मरने पे हर बंदा चीखे मारा। लेकिन जब इसकी अपनी बारी आई और इसने जाकर देखा तो इसकी चीख भी दूसरों से कम ना थी, क्योंकि उस कफन में इसका अपना चेहरा था और उस कफन के अंदर एक आईना था, जो जाता उसको उसमें अपना चेहरा दिखता। खैर, अब बात तो आप समझ ही गए होंगे काफ़ी हद तक। बाद में जो भी वहाँ के थे उनके बड़े, उन्होंने कहा कि हमारा ये जो भी कह लिए फैक्ट्री कह लें जो जिस जुबान में कह लें कि हमारा बिजनेस लॉस पे जा रहा है, और ये एक एक्टिविटी कराई गई है कि हर एम्प्लॉय, हर वर्कर, हर मैनेजर जो बड़ा छोटा है वो ढूंढे कि कहीं मैं खुद ही तो अपनी तरक्की के रास्ते की रुकावट नहीं हूँ। तो लिखिएगा, अक्सर हम दूसरों को वजह समझते हैं, फुला आगे नहीं बढ़ने देता, फुला लेग पुलिंग करता है, फुला काम नहीं देता, फुला मेरी रिक्वेस्ट को नहीं मानता, फुला 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 फुला। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि बीवियाँ तो बड़ी फारिग हो जाती हैं ससुराल और मियाँ का नाम लेके, जन्नत में भी जाते वक्त यही कह देंगे बस अल्लाह ये दो रुकावटें दूर कर देता तो हम भी जन्नत में जाते। बिल्कुल इसी तरह हमारी तरक्की के रास्ते की रुकावटों में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं। कभी कभी हमारी कोई एक आदत होती है, कभी कभी हमारा कोई एक तरीका होता है, कभी कभी हमारा एक कोई एटीट्यूड होता है, हमारी कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम दूसरों के नाम पे लगाते हैं।